दिन भर 2 अगस्त दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। विवादित नागरिकता रजिस्टर को लेकर असम के सिलचर गए तृणमूल कांग्रेस नेताओं को एयरपोर्ट पर रोका गया, पार्टी का आरोप लागू है सुपर इमरजेंसी।
एक मेंबर डेलीगेशन गया था एयरपोर्ट में, उनको पकड़ के रखा, हम लोग बोल रहा है वो दो 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 करके जाएंगे, लेकिन ये सुपर इमरजेंसी में ये भी नॉट अलाउड है।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन शोषण के खिलाफ विपक्षी दलों का बिहार बंद।
पूरी जांच हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।
और इमरान खान के न्योते पर सिद्धू जाएंगे पाकिस्तान, सुनवाएंगे खास बातचीत।
हमें उम्मीद है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, संबंधों में सुधार कर सकते हैं।
होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
चीन और भारत, दो प्राचीन संस्कृतियां, दो पड़ोसी देश। चीन जहां अब भी महात्मा गांधी के प्रशंसक मौजूद
हैं।
चीन जहां शंघाई जैसे जादुई शहर हैं।
और पिछले 14 साल के अंदर जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सारी डेवलप हुई है। और क्यों हुआ है? बिकॉज शंघाई हांगकांग से कम्पीट करता है।
और हिंदी फिल्मों के लिए दीवानगी भी।
कोई बता दे मैं हूं कहां।
सुनिए चीन की कहानियां, मैं विनीत खरे जल्द ही लेकर आऊंगा बीबीसी हिंदी रेडियो पर।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। हम सामान्य तौर पर आपको विश्व समाचार पहले सुनाते हैं, लेकिन ये खास रिपोर्टें हैं जो आप शनिवार से सुन पाएंगे बीबीसी हिंदी रेडियो पर। हमने शुरुआत में आज आपको इसकी जानकारी दी। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com के साथ मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं लाइव। और ये सीधे हम शुरुआत में बात करते हैं असम में जारी हुए नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के विरोध में आज सिलचर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की बात जो हमने शुरुआत में आपको बताई, उसे एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में 6 सांसदों समेत कुल 8 लोग हैं। ये स्थानीय लोगों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन इन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। अभी तक उनको वहीं रोका गया है, उन्हें डिटेन करके रखा गया है। NRC की जो फाइन नल लिस्ट है सोमवार यानी 30 जुलाई को जारी हुई थी, इसमें असम में रह रहे करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। हालांकि उनके पास अपने दावे पेश करने का मौका है, लेकिन इसे लेकर राजनीति हो रही है और तमाम राजनीतिक दल फाइनल ड्राफ्ट की व्याख्या अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने को लेकर पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने तीखी प्रतिक्रिया दी और हालात की तुलना सुपर इमरजेंसी से की। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए।
6 सांसद और एक MLA और एक मंत्री बंगाल से एक मेंबर डेलीगेशन गया था, वो लोग अभी एयरपोर्ट में उनको पकड़ के रखा। हमारा 2-3 महिला सांसद से फिस्ट कप्स हुआ, एक महिला सांसद इंजर्ड, एंड हमारा एक सांसद सीनियर सांसद चीफ प्रिफर राज्यसभा का शुकेंदु शेखर राय, उसका पेस मेकर में धक्का लगा, वो हार्ट पेशेंट है। काफी खराब सिचुएशन है। 144 ऑन है हमारा। 6 सांसद 8 मेंबर का डेलीगेशन जो था, हम लोग बोल रहा है वो दो 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 करके जाएंगे, लेकिन ये सुपर इमरजेंसी में ये भी नॉट अलाउड है।
पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हम असम के सिलचर से अपने संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली से संपर्क का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टूडियो मैनेजर तिलक राज भाटिया बता रहे हैं कि अभी उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें ये मामला केवल बांग्ला भाषी लोगों को ही परेशान नहीं कर रहा है। 40 लाख लोग जो कुल मिलाकर जिनका नाम नागरिकता सूची में नहीं आया है, फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया है, उनमें सैकड़ों हिंदी भाषी लोग भी हैं। ये लोग दावा कर रहे हैं कि बरसों पहले उनके माँ बाप दादा राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आकर असम में बस गए थे। इनकी क्या शिकायतें हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। यह खबर है बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बालिका गृह में हुए यौन शोषण के विरोध में आज विपक्ष सड़कों पर था। विपक्षी दलों ने बिहार बंद का आयोजन किया था, इसका कई शहरों में असर दिखा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पटना से मनीष शांडिले।
आज के बिहार बंद को सफल बनाने के लिए बंद समर्थक दलों के कार्यकर्ता सुबह से ही जगह जगह सड़कों पर निकले। उन्होंने नीतीश सरकार से इस्तीफा मांगा, जगह जगह ट्रेन रोकी और सड़क पर भी यातायात बाधित किया। मुजफ्फरपुर में इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के घर की गली के सामने बंद समर्थकों ने प्रदर्शन किया। राजधानी पटना में बंद के दौरान मुख्य विरोध प्रदर्शन डाक बंगला चौराहे पर किया गया। इसके पहले गांधी मैदान के पास बंद समर्थकों और पुलिस के बीच तब झड़प हुई जब पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने से रोका। डाक बंगला चौराहे पर माकपा के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा,
और यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी, तब तक लड़ाई चलेगी जब तक कि मंजू वर्मा को बर्खास्त नहीं किया जाता है, उसके पति को गिरफ्तार नहीं किया जाता और पूरी जाँच
वहीं सत्तारूढ़ जदयू का कहना है कि विपक्ष नीतीश कुमार और मंत्री के इस्तीफे की मांग किस आधार पर कर रहा है। विपक्ष विभागीय मंत्री पर आरोप लगा रहा है तो साक्ष्य क्या है, जबकि अदालत की निगरानी में जांच की मांग पर विधान पार्षद और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह दावा किया।
भ्रम की स्थिति न रहे, सीबीआई को रेफर कर दिया और देश की पहली सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की है कि राज्य के अंदर घटित होने वाली घटना पर सरकार ने यह तय किया कि पीआईएल के अगले डेट में राज्य सरकार खुद आवेदन दाखिल करेगी कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय निगरानी करे। हम अपराधी गुंडा और इस ढंग के जो लोग कृत करने वाले हैं, 12.5 वर्षों हमने बचाया नहीं किसी को।
आज इस मामले में एक और अहम हस्तक्षेप अदालत की ओर से हुआ। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने मीडिया में बालिका गृह की नाबालिग लड़कियों की तस्वीर दिखाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि भविष्य में बच्चियों की तस्वीरें धुंधली कर भी नहीं दिखाई जानी चाहिए। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और इस बीच असम के सिलचर से हमारे सहयोगी अमिताभ भट्टासाली फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमिताभ, स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे पूरे दिन क्या कुछ वहां पर हुआ और फिलहाल वहां क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, अभी ताजा अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे।
अभी भी सिलचर एयरपोर्ट पे ही है हम लोग दोपहर से, और अभी थोड़ी देर पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को MP और MLA और पश्चिम बंगाल से जो मिनिस्टर आए हुए हैं उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया अंडर सेक्शन 151 CRPC, जो सेक्शन बनती है 144 धारा जो लागू है पूरी कच्छ जिले में, तो उसको बंद करने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन लोगों को कहाँ ले जाया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये लोग अंदर ही बैठे हुए हैं, 2:45 जब तक ये लोग आए हैं, प्लेन से उतरे तभी से ये लोग लाउंज पे ही बैठे हुए हैं। और शुरू में तो थोड़ा सा हाथापाई भी हो गया था, बाहर से भी हम लोग सुन रहे थे कि अंदर शोर शराबा मच गया था। तृणमूल कांग्रेस के कुछ महिला MP वहां से आवाज दे रहे थी और पुलिस के साथ हंगामा भी हो रहा था। दो पुलिस महिला पुलिस कर्मी को चोट भी पहुंचा और तभी से ये लोग अंदर है और पूरी पत्रकार की टीम बाहर खड़े हुए हैं तब से।
जी, और जैसा आप बता रहे हैं कि मीडिया के लोग बाहर खड़े हैं, यानी आपको एक्सेस नहीं है, 2:45 से सांसद वहां पर हैं, क्या प्रशासन ने कोई जानकारी दी है अभी तक, कोई ऑफिशियल वर्जन आया है किसी तरह का?
कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ सूत्रों के मुताबिक ये पता चला थोड़ी देर पहले कि धारा 151 के तहत इन लोगों को गिरफ्तार।
जी, जो प्रतिनिधि मंडल गया है उसमें एक सांसद हैं, वयोवृद्ध बताए जा रहे हैं, TMC के एक सांसद हैं, उनकी तबीयत भी खराब बताई जा रही थी, क्या उस बारे में कोई जानकारी है?
नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, उनको ऐसे ही पहले रोक लिया गया था, उनको टॉयलेट भी नहीं जाने दे रहा था, ऐसा आरोप सांसद सुखेंदु शेखर रॉय हम लोग फोन पे बताया, पर इसके बारे में औपचारिक तौर पे कोई इसका
जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अमिताभ दादा, आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार शहर के हालात भी, पूरे जिले के हालात, बराक घाटी के हालात आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर? लोगों में किस तरह की नाराजगी है, किस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति है, जिस तरह की बातें आ रही हैं बाकी देश में, क्या वैसी स्थिति है, क्या है वहां, तस्वीर कैसी है?
देखिए देखिए, ये 144 धारा जो कल रात को अचानक लागू कर दिया गया ये काछार जिले में, ये इसका मकसद एक ही है कि ताकि तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल शहर तक ना पहुंच सके। वहाँ एक आम सभा करने वाले थे, वहाँ उसको संबोधित ना कर सके और यहाँ के जो बंगाली संगठन है उनके प्रतिनिधियों से ना मिल सके, यही मकसद था। वरना 144 धारा जारी कर लागू करने का और कोई मकसद नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि भले ही 40 लाख लोगों का नाम, जिसमें ज्यादातर करीब 90-95% लोग बंगाली बंगला भाषी है, तो इनके नाम नहीं आया है, पर ये यहाँ पिछले 2-3 दिनों से हम लोग ना तो कोई
प्रोटेस्ट नहीं देख रहे हैं,
प्रोटेस्ट नहीं देखे हैं, तो पूरा शांत था।
पूरी स्थिति
लोगों के मन में भले ही शंका हो, पर स्थिति
नियंत्रण में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अमिताभ भट्टासाली, सिलचर से सीधी जानकारी देने के लिए।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
श्रोताओं, आगे बढ़ने के पहले आपसे हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि आज हम शुरुआत में विश्व समाचार आपको नहीं सुना पाए। और अब बात भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि पाकिस्तान में हुए चुनावों के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद बंधी है। सिद्धू पाकिस्तान जाने वाले हैं। दरअसल उन्हें इमरान खान की ओर से शपथ समारोह में शरीक होने का न्योता मिला है। सिद्धू से बात की है हमारे साथी प्रदीप कुमार ने।
मैं सबसे पहले तो सम्मानित महसूस करता हूं। देखिए, आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर मान सम्मान से होता है। तो पहले चार लोगों को जिनको खान साहब ने बुलाया है उनमें मेरा नाम शामिल है, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। दूसरी बात, जब कोई सरकार बदलती है, वजारत बदलती है और कोई नया वजीर आजम आता है, तो वो नई सोच लेके आता है, वो नए तरीके से काम, जो कि सकारात्मक तरीके से काम करने की क्षमता लेके आता है। फिर द पास्ट इज द बेस्ट प्रॉफिट दैट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। फिर ये आप देख सकते हो कि पिछले 20-25 साल में खान साहब ने किस करदार को दर्शाया है। आफतों ने उन्हें संवारा है, निखारा है और उन्होंने संघर्ष को अपना गहना बना के एक नई पार्टी जो स्क्रैच से शुरू की और उसके बाद वजीर आजम बन गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर जो आइकॉनिक हैं, विश्वास किया जा सकता है एक नई शुरुआत का, संबंधों के इम्प्रूव होने का, मतलब आज बंधी है, विश्वास बना है।
सिद्धू साहब, आप उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं और मुझे याद आता है 1989 की वो सीरीज जिसमें पहली बार भारत चार टेस्ट वहां खेला और कोई हारा नहीं था, और एक टेस्ट तो आपने बचाया था, 97 आप रन बनाए थे आपने उसमें, सचिन 52 रन बनाए थे उन्होंने, और आप विकेट पे टिक कर दो दिन तक आपने ये श्योर किया कि भारत ये टेस्ट नहीं गंवाए, और उस वक्त इमरान साहब भी अपने कैरियर में बहुत दमखम के साथ खेल रहे थे। तो क्रिकेट के मैदान पे कुछ ऐसे वाक्य जो आप याद करना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए?
अरे सर, क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत से वाक्य हुए। दिन जो थे घास वाली पिचे होती थी और खान साहब को ये लगता था कि भारतीय लोग जो हैं वो गंजी पिचेस पे खेलते हैं और घास के ऊपर वसीम वकार, इमरान खान और आकिब जावेद को भारतवर्ष नहीं खेल पाएगा, लेकिन उन पिचेस के ऊपर ऐसे खूंखार उगलने वाले बॉलर और ऊपर से घास, तो मुझे लगता था कि ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष जो है वो गहना बनाना पड़ेगा और बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उन हालातों में हम लोग वहां ड्रॉ करके आए, तो उसमें कई चीजें ऐसी हुई जो मैं बयां कर सकता हूं कि सचिन तेंदुलकर के चेहरे पे गेंद लगी थी। मतलब मुझे लग रहा था कि 24 पे 4 आउट हैं या ये गेंद लगी है तो 5 आउट हो गए, पीछे तो ज्यादा रहेगा नहीं तो हम मैच हार जाएंगे। लेकिन तेंदुलकर ने ऐसा जज्बा दिखाया कि उस हालात में नाक टूटा हुआ, खून कमीज के ऊपर बरसता हुआ 52 रन बनाए और वकार के साथ पूरी टक्कर ली, तो वो एक याद है। फिर तेंदुलकर के 5-6 छक्के, वो याद है। फिर इमरान खान साहब की कप्तानी जो है वो मुझे इतनी ज्यादा सटीक लगती थी और इतनी ज्यादा लुभावनी लगती थी कि वो विश्वास खुद में नहीं जगाते थे, लोगों में अलग जगा देते थे। मतलब ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते थे। वसीम वकार जब उनके पास स्पाइक शूज नहीं थे, खेलने के जूते नहीं हुआ करते थे, गांव से लाके उन्हें बगैर कोई फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल मैच खिलाए सीधा टेस्ट मैच खिला दिया। इंजामुल हक को एक नॉर्मल खिलाड़ी जैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है वहां देखा, वहां उन्हें बाउंसर मारा और उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस की और सीधा उसे वर्ल्ड कप के कैंप में लाए और सीधा वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। तो इस तरह से हुनर को संवारना, तराशना हीरों की परख जौहरी को होती है और पाकिस्तान की टीम को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब्दील कर देना, कमजोरी को ताकत में तब्दील कर देना, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बना देना, हार को जीत में तब्दील कर देना, ये इमरान साहब के किरदार में है। आज पाकिस्तान भी उन्हीं हालातों से गुजर रहा है, परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी और अमन अमान बहाल करना पड़ेगा। कोई आसान परिस्थिति नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ही थ्राइव्स इन गुड कंडीशंस। जब टीम अच्छी परिस्थितियों में होती थी वो सो जाते थे, लेकिन जब कठिन परिस्थितियों में होती थी तो सबसे आगे होते थे, एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट लीडर।
आप जब मिलेंगे उनसे तो वो बात क्या कहेंगे जिससे दोनों मुल्कों के जो रिश्ते हैं वो भी सुधरे?
फिलहाल तो ये स्वेरिंग इन सेरेमनी है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे ऐसी बातें हो सकेंगी हजूर, लेकिन एक शुरुआत होगी, एक आभास होगा, एक एहसास होगा। आज हमें उम्मीद है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, संबंधों में सुधार कर सकते हैं, बॉर्डर खुल जाए, तिजारत जितनी बढ़ जाए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जितनी हो जाए उतने संबंध ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। ननकाना साहब के लिए शुरुआत पाकिस्तान से करना चाहते हैं, गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन के लिए। करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुलवाना चाहते हैं, हुसैनीवाला बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, ये खुल जाए, कोई अमृतसर से साग मक्की की रोटी खाए, जाके शाम को बिरयानी खा के लाहौर से वापस आ जाए, तो फिर मैं मानूंगा कि रिश्ते सुधर रहे हैं। और तिजारत जितनी बढ़ती जाएगी उतना मुझे लगता है कि लोगों में प्यार परस्पर बढ़ता जाएगा और ये एक्रिमनी घटती जाएगी। हम लोग अहिंसा से ही हमने ये देश आजाद करवाया।
क्रिकेट मैदान के रिश्तों की याद और भविष्य की उम्मीदों के साथ ये थे नवजोत सिंह सिद्धू और उनसे बात कर रहे थे प्रदीप कुमार। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग पर आए दिन प्रदर्शन होते हैं, लेकिन आज हुआ एक प्रदर्शन कुछ अलग था। इसमें हिस्सा लिया देश भर से आई उन कामकाजी महिलाओं ने जो घरों में काम करती हैं। उनकी क्या दिक्कतें हैं और वो क्या चाहती हैं, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता भूमिका राय।
हम अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ के दूसरे आंटी के यहाँ, एक बड़ा बच्चा है उसको देख के उसको तैयार करके स्कूल भेजते हैं। हमारे बच्चे का तो भविष्य गया लेकिन उसके बच्चों को तो हम स्कूल में भेज रहे हैं ना, तो वही चीज हमें दुख होता है कि हम अपना घर गंदा छोड़ के बच्चों को सोते हुए छोड़ के उनके यहाँ झूठे बर्तन मारने जाते हैं, उनका काम करने जाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो नहीं सोचते। चोरी का नाम लगाने में दीदी वो जरा सा नहीं सोचेंगे, 2 मिनट में चोरी का नाम लगाते हैं।
ऐसी बहुत सी आवाजें आज नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर गूंजी। समय पर वेतन नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी मिलती है तो पैसे काट लिए जाते हैं। ऐसी ही ढेरों मांगों के साथ देश के कई हिस्सों से घरेलू कामगार आज यहां पहुंचे। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। इनकी मांग है कि नए श्रम कानून को वापस लिया जाए। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स के सदस्य रविंद्र कुमार ने बताया कि वे लोग यहाँ घरेलू कामगारों के अधिकारों को सुरक्षित करने की मांग लेकर आए हैं।
डोमेस्टिक पॉलिसी एक गाइडलाइन हो सकता है लेकिन कानून के बिना हम डोमेस्टिक वर्कर के अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर सकते। जो हमारी मेन मांगे हैं कि अगर ये डोमेस्टिक वर्कर कानून बनता है तो इनके काम को मान्यता मिलती है, काम को मान्यता मिलेगी तो इनके लिए मिनिमम वेज तय हो जाएगा, मिनिमम वेज के आधार पर देश के सभी डोमेस्टिक वर्कर को मजदूरी मिलेगी, कितने घंटे काम करना है, साप्ताहिक की छुट्टी मिलेगी, बीमार पड़ेंगे तो उसके लिए मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा।
एक ओर जहां शहरों में घरेलू कामगार हर मध्यम वर्गीय परिवार की जरूरत बन चुके हैं, वहीं इनकी शिकायत है कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। प्रदर्शन में मौजूद ज्यादातर महिलाओं की शिकायत थी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, और ऐसा करने वालों में पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं जिनसे समझदारी की उम्मीद की जाती है।
मेरा नाम करमजीत है, मैं इंदिरा कैंप नंबर 4 की दिल्ली से हूँ। जब मैं काम करने जाती थी तो आंटियाँ बोलती थी तो सुबह सुबह गंदा काम करके जाती, सुबह शाम को आके दोबारा मेरा काम कर। और इतना ज़्यादा कभी, जैसे इन्होंने बताया, छुट्टी का तो सवाल ही नहीं है। इसके अलावा बेइज्जती क्या कहते हैं, छोटी ये काम कर दे, छोटी ये काम कर दे, जितना मर्जी काम कर दो, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। जैसे कोई भी हॉलीडे आए, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती। और मेरी माँ आज तक काम कर रही है, 60 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन हमारे पैसे वहीं के वहीं हैं। सब
प्रदर्शन करने आए लोगों में ज्यादातर महिलाएं थी, पुरुषों की संख्या कम थी, लेकिन शिकायत उनकी भी यही है। उन्हें भी सरकार से शिकायत है। उनका मानना है कि क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। भूमिका राय, BBC दिल्ली।
और अब बात आपके ईमेल और पत्रों की, आइए सुनते हैं आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज बहुत दिनों बाद
मैं हूँ वंदना, पर बहुत दिनों बाद नहीं हूँ, पिछले हफ्ते भी आई थी।
अच्छा, मैं बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूँ। बहरहाल, वंदना के पास चिट्ठियाँ हैं और हमारे जो प्रसारण है उस पर बहुत सारे श्रोताओं ने प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं।
जी, तो शुरू करते हैं पोस्ट कार्ड से।
जी,
और ये पोस्ट कार्ड है हतिया मुठ्ठीगंज इलाहाबाद, शेख उमैद अहमद अंसारी।
क्या लिखते,
उन्होंने बहुत सुंदर लिखावट में लिखा है,
अंग्रेजी में लिखा है।
हिंदी में अगर मैं तर्जुमा कर दूं तो ये कहते हैं कि बहुत बड़े फैन हैं और बहुत लंबे समय 2000 से सुन रहे थे, बीच में नहीं सुन पाए। और ये बोल रहे हैं कि क्या कोई टाइम टेबल है आपकी?
टाइम टेबल तो है, सुबह 6:30 बजे से और 7 बजे तक, और शाम को 7:30 से 8 दो कार्यक्रम हैं। और इनको आप शॉर्ट वेव पे सुन सकते हैं, मीडियम वेव पे सुन सकते हैं, अपने मोबाइल फोन पर, और हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर सुन सकते हैं।
बिल्कुल। और जो दूसरा पोस्ट कार्ड है, अशोक कुमार ठाकुर, माली टोल, अदलपुर, दरभंगा, बिहार।
जी,
अक्सर लिखते रहते हैं। इन्होंने बात की है विवेचना की, जो कि करण थापर से हुई थी। और ये बोल रहे हैं कि उनकी जो पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी के बारे में इनको बहुत जानकारी मिल पाई। और इन्होंने कहा है कि जो नई पीढ़ी है वो पत्रकारिता की तरफ काफी आकर्षित हो रही है, और ऐसी परिस्थिति में करण थापर का अनुभव उनके काम आएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का जिन्होंने चिट्ठियां लिखी, विवेचना पसंद आई। एक और मैं देख रहा हूँ, आप इशारा कर रही हैं कि एक और चिट्ठी आपके पास है।
जी, ये है प्रदीप नेगी, ग्राम रैंस, चोपता, चमोली, गढ़वाल।
चमोली उत्तराखंड में, चोपता वो जगह है जहाँ से ऊपर जाते हैं, 3,500 मीटर की ऊंचाई पे शिव मंदिर है, तुंगनाथ का मंदिर कहते हैं, चंद्रशिला है। मैं वहाँ आता जाता रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। तो गांव रैंस से क्या लिख रहे हैं भाई?
इनका ये कहना है कि आपने रूस में हो रहे प्रदर्शन को तो बीबीसी में दिखाया सुनाया, लेकिन जो भारत में नई पेंशन योजना लागू है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं लाखों कर्मचारी, उस पर कोई रिपोर्ट?
ये इनकी शिकायत है। देखिए, रूस में जो प्रदर्शन हुआ है उसकी खबर की कुछ अहम महत्ता रही होगी, इस वजह से हमने उसको प्रसारित किया। और भारत में जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी जनता जो कोई फैसला करती है, उस पर हम अपने गाहे बगाहे अपने श्रोताओं को रिपोर्टें सुनाते रहते हैं। लेकिन खास तौर पर इस पेंशन की, अब कौन से आंदोलन की आप बात कर रहे हैं मुझे अंदाजा नहीं है, अगर आप थोड़ा विस्तार से लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे। बहरहाल, पेंशन एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, और अगर उस पर आगे आने वाले दिनों में कोई मौका हमें मिलेगा तो हम जरूर रिपोर्टें प्रसारित करेंगे।
अब मैं एक ईमेल ले रही हूँ, यह है नरसिंह बहादुर सिंह, मयूर विहार, शास्त्री नगर, मेरठ से।
जी,
इन्होंने लिखा है कि जुबैर अहमद की आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार से बातचीत के संपादित अंश सुनकर मन दुख, पीड़ा और क्रोध के मिश्रित भाव से भर गया, क्योंकि इंद्रेश कुमार ने बीबीसी जैसी संस्था को मिलावट करने वाला, झूठा और देश को तोड़ने वाला कहा। इस बातचीत को सुनने के बाद मुझे आरएसएस जैसी संस्था की अपनी नेताओं की परख करने की क्षमता पर अविश्वास उत्पन्न हो गया है, क्योंकि आरएसएस के किसी अन्य नेता के इस प्रकार के बोल मैंने नहीं सुने। मैं समझता हूं कि आरएसएस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
ये हमारे श्रोता हैं, और मैं देख रहा था कि बहुत सारे और श्रोताओं ने उस इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है जो हमने हाल ही में प्रसारित
किया। कमल जोशी अल्मोड़ा उत्तराखंड है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ लिखा है।
क्या लिखते हैं?
ये लिख रहे हैं कि बीबीसी पर मिलावट का धंधा या देश को तोड़ने जैसे आरोप हास्यास्पद ही कहे जा सकते हैं।
और एक चिट्ठी, एक ईमेल मैं पढ़ देता हूं जो लिखी है अथर सलीम ने। उनका कहना है कि बीबीसी का ध्यान मैं पिछले दिनों आई इस खबर की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें बताया गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है। तो ये कहते हैं कि बीबीसी समेत हमारे समाचार माध्यम, राजनीतिक और सामाजिक संगठन आखिर इस बिंदु पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। इंद्रेश जी से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए था, जो बीबीसी की बड़ी चूक है। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि और तमाम श्रोताओं ने, ये गौतम दत्ता की ईमेल मेरे सामने है, बहादुरगंज किशनगंज से लिखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार काफी आक्रामक लगे। वे जुबैर साहब के प्रश्नों का जवाब बहुत ही अजीब ढंग से दे रहे थे, किसी राष्ट्र को यह शोभा नहीं देता। इस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर की है वंदना हमारे श्रोताओं ने उस इंटरव्यू पे। तो अब इस पर हम तो यही कह सकते हैं कि हमारा काम है तमाम उन लोगों से बात करना जो सार्वजनिक जीवन में हैं, वो किस तरह से हमारे सवालों का जवाब देते हैं या क्या आरोप लगाते हैं, ये हम उन पर छोड़ते हैं।
जी बिल्कुल, एक समय है एक और चिट्ठी लेने का। जी, तो ये चिट्ठी भेजी है अर्जुन कुमार पाली राजस्थान से, और लिख रहे हैं कि बचपन से सुन रहे हैं और टीचर कहा करते थे कि जनरल नॉलेज प्राप्त करनी हो तो बीबीसी के कार्यक्रम सुने, जो हमने की भी। साथ में ये जोड़ रहे हैं कि आजकल इनको लग रहा है कि कार्यक्रम में डिक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है,
उच्चारण की ये बात कर रहे हैं।
यदि इसे सुधार सके तो मजा ही आ जाए।
हाँ, वो धीरे धीरे सुधरेगा और हम इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उच्चारण का दोष कम से कम हो।
नुक्ते वगैरह पे ये बात
जी। अब समय हमारे पास बहुत कम है और ईमेल इस बार बहुत रह गई हैं। जैसे एक ईमेल आई है गौरी सेन की, हजरतगंज लखनऊ से लिखती हैं। लखनऊ से अपनी श्रोता गौरी सेन का नमस्कार स्वीकार करने की कृपा करें। इन्होंने वसतुल्ला खान की बहुत तारीफ की है और अविनाश दत्त गर्ग को याद किया है। कहती हैं, मैं और मेरे पति दोनों अविनाश दत्त गर्ग को याद करते हैं, आजकल उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। तो आप तो जानती हैं कि अविनाश बीबीसी छोड़ चुके हैं और अब कहीं और काम कर रहे हैं।
और महिला श्रोताओं को मैं फिर से कहूंगी कि जरूर से चिट्ठी लिखें, उनकी संख्या चिट्ठी लिखने वालों में कम रहती है।
जी हाँ, वो सुनती जरूर है लेकिन चिट्ठी लिखने में या तो व्यस्त रहती होंगी, चिट्ठी लिखने में थोड़ा सा और उदार हूं तो अच्छा रहेगा। बहरहाल अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए चलते चलते पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk पर। नमस्कार।
और अब बात खेल की दुनिया की। स्टूडियो में मौजूद है राखी शर्मा। राखी, क्या है खेल जगत का आज हाल?
जी, सबसे पहले बर्मिंघम टेस्ट के बारे में जान लेते हैं, जहां भारत और इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन का खेल खेल रही है। फिलहाल भारतीय टीम अपनी पहली पारी खेल रही है, जिसमें भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 143 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली क्रीज पर हैं, जो 46 रन बनाकर खेल रहे हैं, और दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे हैं हार्दिक पांड्या, जो फिलहाल 18 रन बनाकर नाबाद
हैं। एक सदी शुरुआत भारत को मिली थी, जहां 50 रन की पार्टनरशिप हुई थी ओपनर्स के बीच, फिर अचानक क्या हुआ जो भारत ने लगातार विकेट गंवा दिए?
मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि विराट कोहली, सबसे पहले उनका जिक्र कर दूं, क्योंकि एक खास उपलब्धि उन्होंने अपने नाम कर ली है, जो कि 13वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाले। 23 रन बनाते ही उन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। और अब चलें भारतीय पारी की तरफ, तो इंग्लैंड से पहली पारी में मिले 247 रन के जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। 50 रन के स्कोर पर मुरली विजय के रूप में भारत को पहला झटका लगा। 14वें ओवर की 4थी गेंद पर सैम करन ने मुरली विजय को LBW किया, वो सिर्फ 20 रन ही बना सके। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए KL राहुल को भी करन ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल किया, उन्होंने 4 रन का योगदान दिया। वहीं 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर करन ने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को भी अपना शिकार बनाया, वो 26 रन जोड़ सके। डेविड मिलान के हाथों उन्हें कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा गया। भारत का 4था विकेट अजिंक्य रहाणे के रूप में गिरा, जिन्होंने 15 रन बनाए। 5वें आउट होने वाले बल्लेबाज दिनेश कार्तिक रहे, जो खाता भी नहीं खोल सके। इससे पहले आज इंग्लिश टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 285 रन से आगे खेलना शुरू किया। ये टीम अपने स्कोर में महज 2 रन ही जोड़ पाई और ऑल आउट हो गई। आज का आखिरी विकेट भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने लिया। और चले बैडमिंटन की तरफ, तो भारतीय खिलाड़ी एशियन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी रत्ना चौक इंतनॉन को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई।
बहुत शुक्रिया राखी शर्मा खेल की खबरों के अपडेट के लिए। और चलते चलते मुख्य समाचार मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। असम के सिलचर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को हवाई अड्डे पर ही रोक लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC में जिन लोगों के नाम नहीं हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए असम पहुंचे थे। चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में शामिल चीन के पड़ोसियों के बीच विवादित दक्षिण चीन सागर के देशों में कामकाज को लेकर सहमति बन गई है। चीन और उसके पड़ोसी वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, ताइवान और फिलीपींस इस विवादित इलाके के हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। जिम्बाब्वे के चुनाव आयोग ने कहा है कि वो जल्द ही सोमवार को कराए गए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे देना शुरू करेगा और लोग शांति बनाए रखें। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।